मेरे आत्मीय मित्रों नमस्कार। आज 15 अक्टूबर 2019 के AFEIS के इस डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों आइए आज हम लोग अब जो जनरल स्टडीज का फर्स्ट पेपर मेन का रहा है उस पर कुछ बातें करते हैं। आप यूं समझ लीजिए कि पूरे के पूरे सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के आपके प्रिपरेशन में जो सबसे अधिक चुनौतियों से भरे हुए पेपर्स होते हैं जिन्हें हम जनरल स्टडीज के नाम से जानते हैं और जिसके चार पेपर आपको देने पड़ते हैं, अब हम उनके विश्लेषण के क्षेत्र में प्रवेश कर गए हैं। तो दोस्तों इससे पहले कि मैं अपनी बात शुरू करूँ, मैं एक उम्मीद आप सबसे कर रहा हूँ और मुझे लगता है कि मेरी यह उम्मीद आप जरूर पूरी कर रहे होंगे। और उम्मीद यह है कि मैंने बहुत पहले आप सबसे अनुरोध किया था कि आप सबको चाहिए कि मेन एग्जामिनेशन के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं वे सब आपके पास बकायदे हार्ड कॉपी के रूप में मौजूद हों, बार बार आप उन्हें पढ़ें, देखने और समझने की कोशिश करें ताकि उसकी कुछ बातें आपके दिमाग में आभासी तौर पर ही सही लेकिन आ जाएं। यदि आपने ऐसा किया है तो पाएंगे कि अब जो बातें मैं आपसे करने जा रहा हूं वे आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगी और तभी आप इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा भी उठा सकेंगे। और यदि आपने ऐसा नहीं किया है तो मुझे यह भी पता है कि शायद मेरी बातें आपको उतनी जमेंगी ही नहीं। हो सकता है कि आपको ये भी लगे कि ये फालतू की बातें हो रही हैं, छोड़ो कोई जनरल स्टडीज करंट अफेयर्स के बारे में तो सर बता नहीं रहे हैं, इतना तो हम भी जानते हैं, इसको सुनने से क्या फायदा, क्यों टाइम वेस्ट करना, आप यह भी सोच सकते हैं। लेकिन चलिए यदि आप यह सोच भी रहे हैं तो कोई बात नहीं, उस समय आप ऐसा नहीं कर पाए, अभी भी आपके पास वक्त है क्योंकि आज तो हम केवल जनरल स्टडीज के फर्स्ट पेपर की ही शुरुआत कर रहे हैं, अभी तो और भी पेपर बाकी हैं। आप ऐसा करके देख लीजिए, आप पाएंगे कि खुद आप कितना अधिक बदल चुके हैं मेरी बातों को खासकर ग्रहण करने के मामले में। और यदि आपको फिर बेहतर लगे तो फिर आप डेफिनेटली इसी प्रक्रिया को अपनाएं क्योंकि अंततः लाभ तो आपको ही पहुंचना है। और मुझे पूरा विश्वास है कि एक बार मैंने जो बताया है उसको करके मुझे मौका जरूर देंगे। तो आइए फ्रेंड्स अब शुरू करते हैं जनरल स्टडीज के फर्स्ट पेपर की एनालिसिस। देखिए इससे पहले कि आप किसी भी क्वेश्चन पेपर को देखें आपको मालूम होना चाहिए कि ये जो क्वेश्चन पेपर तैयार किया गया है इसका सिलेबस क्या है। मैंने यहां तक पाया कि बहुत से स्टूडेंट्स को तो क्वेश्चन पेपर का पूरा नाम भी नहीं मालूम होता, उनके दिमाग में ऐसे ही होता है कि हाँ हिस्ट्री ज्योग्राफी पर पूछा जाएगा। नहीं, आपको एग्जैक्ट मालूम होना चाहिए कि ये जो क्वेश्चन पेपर है यानी कि जहां हम यहां फर्स्ट पेपर की बात कर रहे हैं इसका शीर्षक क्या है, इस पेपर का नाम क्या है। ये जनरल स्टडीज फर्स्ट पेपर ही नहीं है, इसका नाम कुछ दूसरा है। फर्स्ट पेपर तो एक गिनती है ना, जिसमें एडजेक्टिव है या इस जिसका विषय से संबंध है वो नाम क्या है। तो देखिए इसका नाम है भारतीय संस्कृति, यानी कि इसमें भारतीय संस्कृति के बारे में प्रश्न पूछे जाएंगे। देखिए जब हम भारतीय संस्कृति की बात करते हैं तो जब आप सिलेबस पर जाएंगे तो उसके दो पक्ष हो जाते हैं, एक तो भारतीय संस्कृति एज ए होल जिसमें हम कल्चर ऑफ इंडिया या इंडियन कल्चर कहते हैं, और दूसरा है भारतीय संस्कृति के जो अलग अलग तत्व रहे हैं जो इतिहास के दौर में विकसित होते रहे, इतिहास के क्रम में, यानी कि हमारी मूर्तिकला कैसी रही है, चित्रकला हमारी कैसी रही है, स्थापत्य कला की क्या विशेषताएं रही हैं, नृत्य संगीत, इन सब के बारे में जानना भारतीय संस्कृति के बारे में जानना है। इसका मतलब यह हुआ कि यदि इन सब पर कोई भी प्रश्न पूछा जाता है तो सीधी सी बात है कि वो विद इन द सिलेबस ही है क्योंकि वो भारतीय संस्कृति के अंतर्गत पूछा गया है। इसके बाद इसी का जो दूसरा हिस्सा है वह है विश्व का इतिहास। अब आप देखिए कि जब हम विश्व का इतिहास कहते हैं तो इनफैक्ट सच पूछिए तो क्या भारत विश्व में नहीं है। हालांकि ठीक है हमारी आदत इस तरीके से है कि हम उसे एक प्रकार से भारत का इतिहास के साथ साथ विश्व का इतिहास कह लेते हैं, भारत के इतिहास को हम अलग से जानने और समझने की कोशिश करते हैं। हालांकि इसमें जब सिलेबस को देखेंगे तो इससे पहले कहा गया है इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, इसके बाद है फिर हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटी। अगर इंग्लिश में आप इसे देखेंगे तो इसका सही जो नाम है इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर। जब हम इंडियन हेरिटेज की बात करते हैं और जब कल्चर की बात करते हैं तो क्या आ जाता है, जो मैंने अभी आपसे बताया कि किस किस तरीके की विरासत हमारे पास है चित्रकला के रूप में और दूसरी कलाओं के रूप में। फिर जब हम हिस्ट्री पर आते हैं तो देखिए हिस्ट्री में दोनों ही आ जाते हैं। अब आपको इंडियन के शुरू के शब्द को जोड़ना होगा, इंडियन हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी मतलब भारत का इतिहास और भारत का भूगोल, साथ ही साथ विश्व का इतिहास और विश्व का भूगोल। जब हम विश्व के इतिहास की बात करते हैं तब फिर आप उसे कैसे डिफाइन करेंगे, भारत के जब इतिहास की बात करेंगे तो कैसे डिफाइन करेंगे, इसके बारे में देखिए बकायदे आपके सिलेबस में दिया हुआ है। जब भारत के इतिहास की बात आती है तो उसने साफ साफ लिखा है कि 18वीं शताब्दी के लगभग मध्य से लेकर, यानी कि आसपास समझ लीजिए 1750 के आसपास से लेकर, इसका मतलब है कि भारत पर जब अंग्रेजों का शासन हो गया तब से लेकर वर्तमान समय तक का आधुनिक भारतीय इतिहास, मतलब क्लियरली लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि 1750 से पहले का जो इतिहास है वो आपको नहीं पढ़ना है, उस पर प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। लेकिन जो कल्चर वाला पार्ट है, जो हेरिटेज वाला पार्ट है, वह आपको पढ़ना होगा। तो आप चाहे उसको हेरिटेज और कल्चर का हिस्सा मान लीजिए, चाहे आप उसे इतिहास का हिस्सा मान लीजिए, वह आपके ऊपर है। इसके बाद जो वर्ल्ड हिस्ट्री है, देखिए वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में भी बहुत क्लियरली लिखा हुआ है कि विश्व के इतिहास में आपको 18वीं सदी से जो घटनाएं होनी शुरू हुई, 18वीं सदी का मतलब है सन आप कह लीजिए कि 1700 के आसपास से, तो 1700 के आसपास कोई बहुत महत्वपूर्ण घटना घटित नहीं हुई थी। इस 1700 के लास्ट में जाकर दुनिया में दो बहुत महत्वपूर्ण क्रांतियां हुई हैं, आंदोलन हुए हैं, जिसमें एक तो अमेरिका आजाद हुआ और दूसरे में फ्रांस में क्रांति हुई, अमेरिका और फ्रांस की क्रांति वहां से लेकर के, और फिर उसमें उन्होंने डिटेल दी हुई भी है। तो दोस्तों ये हो गया हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटी, समाज। जब आप समाज के बारे में सिलेबस में डिटेल में जाएंगे तो देखिए इसमें बहुत डिटेल में दिया हुआ है कि समाज से उनका क्या मतलब है। आपको समाज की मुख्य विशेषताएं पढ़नी है, भारत की जो विविधता है उसके बारे में जानना है, महिलाओं की भूमिका के बारे में स्पेशली मेंशन किया हुआ है। इसके बाद जो जनसंख्या से संबंधित समस्याएं, गरीबी से संबंधित, शहरीकरण से संबंधित जो समस्याएं हैं, उन सब का बिल्कुल आपके सिलेबस में उल्लेख किया गया है। इसके बाद फिर भूगोल के बारे में है, तो विश्व के भौतिक भूगोल की विशेषताएं, फिर उसके अंदर फिर थोड़ी सी डिटेल्स दी हुई है। मैं अब सिलेबस पर ज्यादा नहीं जाता, आप देख लेंगे। खासकर यहां सिलेबस की चर्चा मैंने इसलिए की है ताकि आप अपने जो फर्स्ट पेपर में जो प्रश्न पूछे गए हैं उन्हें अच्छे तरीके से समझ सकें कि ये प्रश्न पूछा कहां से गया, ये कहां से आ गया। क्योंकि जब तक आपकी दृष्टि इस बात को नहीं पकड़ पाएगी कि नहीं ये तो सिलेबस से ही है, तब तक आपका मन बेवजह आशंकित रहेगा और आप बेवजह तनाव में रहेंगे, आशंकाओं से घिरे रहेंगे और पता नहीं क्या क्या चीजें पढ़ते रहेंगे क्योंकि आपके मन में भय समाया हुआ है। जितने भी क्वेश्चन इस बार पूछे गए हैं मित्रों, वो सब के सब विद इन द सिलेबस ही हैं। नो डाउट कि कभी कभी एकाध क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो सिलेबस से ही होते हैं लेकिन आप प्रिडिक्ट नहीं करते कि ये सिलेबस से ही है, उनकी आप कल्पना ही नहीं कर पाते कि अच्छा इस तरह का भी प्रश्न पूछा जा सकता है, लेकिन पूछ लिया जाता है। और अगर पूछ लिया गया तो आप उससे इनकार थोड़ी कर सकेंगे कि नहीं भैया ये कहां से पूछ गया और अब पता लगा कि कोर्ट में चले गए, ऐसा तो संभव नहीं है। उदाहरण के तौर पर देखिए मैं एक प्रश्न बेहतर होगा कि आपको बताऊं जो वर्ल्ड हिस्ट्री से रिलेटेड है जिसे आप बहुत अच्छे तरीके से अंतर कर सकेंगे। पिछले साल वर्ल्ड हिस्ट्री से एक प्रश्न पूछा गया, मलय प्रायद्वीप में उपनिवेशन उन्मूलन प्रक्रम में सन्निहित क्या क्या समस्याएं थी, व्हाट प्रॉब्लम्स वेयर जर्मन टू द डीकोलोनाइजेशन प्रोसेस इन द मलय पेनिनसुला। 10 शब्दों में इसे लिखना है, व्हाट प्रॉब्लम्स वेयर जर्मन टू द डीकोलोनाइजेशन प्रोसेस इन द मलय पेनिनसुला। मित्रों 150 शब्दों में आपको उत्तर लिखना है और 10 अंक हैं। सच पूछिए तो इसके बारे में आपको पुस्तकों में कुछ खास नहीं मिलेगा, लेकिन है ये सिलेबस का। सिलेबस का इसलिए है कि इसमें दिया है उपनिवेशीकरण, उपनिवेश और फिर डी कॉलोनाइजेशन, यानी कि कॉलोनी बनी, उपनिवेश हुआ और फिर वो उपनिवेश समाप्त हुए। जैसे भारत भी आजाद हुआ तो भारत में जो ब्रिटेन का उपनिवेश था वो समाप्त हो गया, तो ये डी कॉलोनाइजेशन आपके सिलेबस में दिया हुआ है। अब इतने सारे देश उस समय उपनिवेश के अंतर्गत थे, अफ्रीका के कितने थे, साउथ ईस्ट एशिया के थे, एशिया के इतने सारे देश उपनिवेश के अंतर्गत थे, उसमें से मलय प्रायद्वीप के बारे में पूछ दिया है। इसका उत्तर दे पाना बिल्कुल संभव नहीं है। ये पिछले साल का पेपर है। इस साल के पेपर में वर्ल्ड हिस्ट्री से देखिए क्या पूछा है, मतलब कितना प्यारा प्रश्न है, कितने सरल तरीके से पूछा गया है, उसकी फ्रेमिंग भी जटिल नहीं है। इसमें कहा गया है, स्पष्ट कीजिए कि अमरीकी एवं फ्रांसीसी क्रांतियों ने आधुनिक विश्व की आधारशिलाएं किस प्रकार निर्मित की थी। 250 शब्दों में लिखना है, 15 नंबर का है। एक्सप्लेन हाउ द फाउंडेशंस ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड वेयर लेड बाई द अमेरिकन एंड फ्रेंच रिवोल्यूशन। 250 शब्दों में। मेरे क्लास के स्टूडेंट को शायद अच्छे तरीके से याद होगा कि इसके बारे में मैं स्पेशली आप लोगों को विशेष रूप से बताता हूं, क्योंकि सच ये है कि इसके बाद ही दुनिया में डेमोक्रेसी की शुरुआत हुई है, समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व की भावना की शुरुआत हुई है। मतलब इस फ्रेंच क्रांति ने पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया, और नो डाउट कि अमरीकी क्रांति का भी अपना योगदान था। तो दोस्तों, आप इन दोनों क्वेश्चंस को आमने सामने रखकर और इस पर विचार कीजिए। जब आप विचार करेंगे तो एक धारणा आपकी बहुत स्पष्ट तरीके से बन जाएगी, और वो यह कि इस बार जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, और ये मैं एक क्वेश्चन के बारे में नहीं कह रहा हूं, अब पूरे पेपर के सभी क्वेश्चंस के बारे में कह रहा हूं, कि इस बार के जो क्वेश्चंस हैं पिछली बार की तुलना में बेहतर हैं, अच्छे हैं, सरल हैं, स्टूडेंट को ज्यादा भटकाते नहीं है, ज्यादा उन्हें भूल भुलैया में घुमाते नहीं है। ये एक अच्छी बात है। इसका मतलब ऐसा लग रहा है कि शायद जो क्वेश्चन पूछने की जो दिशा है वो सरलता की ओर दिखाई दे रही है। मैं अब आपको थोड़ा सा सब्जेक्ट वाइज इसका विभाजन करके बताना चाहूंगा, और देखिए अब जो मैं विभाजन बता रहा हूं वो लगभग लगभग हर साल यही होता है। जो सब्जेक्ट वाइज जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कमोवेश इसी विभाजन के होते हैं। कला से एक क्वेश्चन पूछा गया है, हर साल एक दो क्वेश्चन होते ही हैं। कल्चर से, इंडियन कल्चर से इस बार 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। इस बार काफी पूछे गए, जरूरत से ज्यादा ही पूछ लिए गए, अदरवाइज 3 के आसपास इनकी संख्या होती है, इस बार 5 पूछ लिए गए। लेकिन जितने भी क्वेश्चन हैं वो नो डाउट कि बहुत प्यारे क्वेश्चन हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। इंडियन हिस्ट्री से 40 अंक के प्रश्न हैं, 3 क्वेश्चन हैं। देखिए क्वेश्चन और अंक में थोड़ा सा फर्क मिलेगा। आपको मालूम है कि 1 से 10 तक के जो प्रश्न होते हैं क्रम में वो 10-10 नंबर के होते हैं, और फिर 11 से लेकर के जो 20 तक के प्रश्न होते हैं वो 15-15 नंबर के होते हैं, है ना। तो आप बिल्कुल 10 से गुणा या 15 से गुणा करके नहीं समझ सकते। तो जो भारत का इतिहास है उससे कुल 3 क्वेश्चन पूछे गए, उसमें से 2 क्वेश्चन 15-15 नंबर के थे और 1 10 नंबर का था। तो इस तरह से 40 नंबर के क्वेश्चन भारत के इतिहास से हैं, और ये सभी क्वेश्चन जो है ना फ्रीडम मूवमेंट से हैं। मैंने बताया कि एक क्वेश्चन वर्ल्ड हिस्ट्री से है जो 15 नंबर का था, फिर भूगोल से टोटल 8 क्वेश्चन हैं, 8 क्वेश्चंस, और मार्क्स हैं इसके टोटल 100, इसमें से 4 क्वेश्चन हैं 15 मार्क्स के और 4 ही क्वेश्चन हैं 10 मार्क्स के, यानी कि टोटल 100 मार्क्स। दोस्तों महिला के ऊपर, विमेन्स के ऊपर 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 1 10 नंबर का है और 1 15 नंबर का है। इस तरह से 25 मार्क्स के जो क्वेश्चन हैं वो महिलाओं के ऊपर हैं। तो दोस्तों अब चूंकि वक्त हो चला है, इसके इसमें जिसमें जो और बातें हम लोगों को करनी है उसे कल करेंगे, तो अब मैं यहीं समाप्त करने की इजाज़त आप सबसे चाहूँगा। नमस्कार।